योएल की पुस्तक और लाओदीकियाए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 46 संख्या 46
कैसरिया फिलिप्पी से कैसरिया मारितिमा तक का कालखंड तीसरे से नौवे पहर की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है और उसका विभाजन छठे पहर पर होता है। कैसरिया से कैसरिया के उस क्रम का विभाजन बिंदु रूपांतरण पर्वत था। रूपांतरण पर्वत अन्य दो रेखाओं को तीन चरणों वाले उस मार्ग चिन्ह के साथ संविहित करता है जो पेंटेकोस्ट के रविवार कानून से पांच दिन पूर्व स्थित है। पर्वत पर परमपिता परमेश्वर ने दूसरी बार वाणी की। पहली बार उन्होंने मसीह के बपतिस्मा के समय वाणी की थी। अंतिम बार उन्होंने क्रूस के ठीक पूर्व वाणी की।
अब मेरी आत्मा व्याकुल है और मैं क्या कहूं। पिता मुझे इस घड़ी से बचा ले, परंतु इसी कारण मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता अपने नाम की महिमा कर। तब स्वर्ग से एक वाणी आई, मैंने अपने नाम की महिमा कर दी है और फिर करूंगा। इसलिए जो लोग वहां खड़े थे और ये सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गर्जन हुआ और कुछ ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उससे कहा। यूहन्ना 12:27-30 अड़ी।
परमेश्वर अपने नाम को तब महिमान्वित करता है जब वो 144,000 पर मुहर लगाता है और उन पर अपना नाम लिखता है।
जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर नहीं जाएगा, और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम जो नया यरूशलेम है, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरता है, लिखूंगा। और मैं उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:12-13।
रूपांतरण के पर्वत पर पतरस, याकूब और यूहन्ना ही केवल शिष्य उपस्थित थे, जैसे कि वे याइरुस की कन्या के पुनरुत्थान के समय और फिर गेतसमनी में भी थे। गेतसमनी यूहन्ना 12 में पिता के बोलने के समान क्रूस से ठीक पहले घटित हुई। गेतसमनी का अर्थ तेल का कोल्हू है, जो कुवारियों की तेल परीक्षा को चिह्नित करता है। गेतसमनी वह संकट है जो आत्मा को मृत्यु के आमने सामने ला खड़ा करता है, और बुद्धिमान कुवारियां ये परीक्षा उत्तीर्ण करती है, क्योंकि दूसरी मंदिर परीक्षा में वे जीवन के आमने सामने आ गईं, जैसा कि यीशु ने 30 दिनों तक आमने सामने शिक्षा दी। पहली बार पिता ने मसीह के बपतिस्मा के समय वाणी की, और पहली बार मसीह ने केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को तब साथ लिया जब याइर की 12 वर्षीय बेटी का पुनरुत्थान हुआ। 12 वर्षीय कुवारी का पुनरुत्थान मसीह के बपतिस्मा के साथ सुसंगत है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रतीक है। याइर की बेटी का पुनरुत्थान मसीह के बपतिस्मा और कैसरिया फिलिप्पी के साथ सुसंगत है। गतसमनी और क्रूस से ठीक पूर्व जब पिता ने वाणी की, तब मसीह की व्याकुलता कैसरिया मरिटिमा के साथ सुसंगत है। रेखा पर रेखा के सिद्धांत के अनुसार पतरस उन 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर कैसरिया फिलिप्पी में जब शमौन बर योना का नाम बदलकर पतरस रखा जाता है मुहर लगती है। पैनियम, जो कि कैसरिया फिलिप्पी ही है, में एक बार मुहर बंद हो जाने पर पतरस पर्वत के छठे घंटे पर जाता है, जहां वो पताका के समान ऊंचा उठाया जाता है और वो कैसरिया मारितिमा में कुर्नेलियस के बुलावे का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कैसरिया फिलिप्पी में पतरस परमेश्वर की मुहर और मध्यरात्रि की पुकार का संदेश लेकर उसे प्रचार करने के लिए एक्सेटर कैंप मीटिंग से निकलता है। तुरहियों के पर्व द्वारा निरूपित इस्लाम का संदेश पतरस को समुद्र तटीय कैसरिया तक ले जाता है। इस्लाम का संदेश पतरस को संसार की दृष्टि में ऊंचा उठाता है, क्योंकि पतरस ने तुरहियों के पर्व से पहले ही इस्लाम के भविष्यद्वाणीगत आगमन का पूर्व कथन किया था।
देखो, यहोवा के उस महान और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजूंगा, और वो पितरों का हृदय पुत्रों की ओर और पुत्रों का हृदय उनके पितरों की ओर फेरेगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप से मारूं। मलाकी 4:5-6।
रेखा पर रेखा एलिया का संदेश वो संदेश है जो पिताओं को उनकी संतानों के साथ संरेखित करने की धारणा पर आधारित है। एलिया पिता मिलर थे जो अपनी संतानों का प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। 144,000 विलियम मिलर की संतान है और मिलर का हृदय अपनी संतान की ओर फेरना मिलरवादी इतिहास को एलियैया के इतिहास के साथ तथा बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को 144,000 से संबद्ध दूत के साथ संरेखित करना है। इन चार रेखाओं के संरेखण का एक तत्व ये है कि एलियैया, यूहन्ना और मिलर की परीक्षा के इतिहास में वर्तमान सत्य का एकमात्र संदेश वही था जो दूत के माध्यम से आया।
और गिलाद के निवासियों में से तिशबी एलिया ने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरी वाणी के अनुसार ही ओस या वर्षा होगी, अन्यथा न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी। 1 राजा 17:1।
बहन वाइट स्पष्ट रूप से कहती हैं कि जिन्होंने यूहन्ना के संदेश को, जिसे यीशु ने एलिया के रूप में ठहराया था, स्वीकार नहीं किया, वे यीशु की शिक्षाओं से लाभान्वित न होते। और ये भी कि जिन्होंने मिलर के संदेश को, जो प्रथम स्वर्गदूत के संदेश के रूप में निरूपित किया गया है, अस्वीकार किया, वे द्वितीय स्वर्गदूत के संदेश से लाभान्वित नहीं हो सकते थे। एलिया की इस घोषणा के साथ कि वर्षा केवल उसकी आज्ञा से ही आएगी, एक परम परीक्षा भी संलग्न थी, जिसमें एलिया के संदेश और बाल के संदेश के बीच चुनने की आज्ञा सम्मिलित थी। कब तक का भविष्य सूचक प्रतीक एलिया के कर्मेल पर्वत के प्रसंग को रविवार के विधान के साथ संबद्ध करता है।
तब अहाब ने समस्त इज़राइल को संदेश भेजा और भविष्यद्वक्ताओं को कर्मेल पर्वत पर एकत्र किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर बोला, तुम कब तक दो विचारों के बीच डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसके ही अनुसरण करो, परंतु यदि बाल तो उसके अनुसरण करो। परंतु लोगों ने उसे एक भी बात का उत्तर न दिया। तब एलिया ने लोगों से कहा, मैं अकेला ही यहोवा का भविष्यद्वक्ता रह गया हूँ, परंतु बाल के भविष्यद्वक्ता 450 पुरुष हैं, सो वे हमें दो बैल दे और वे अपने लिए एक बैल चुन ले और उसे टुकड़ों में काटकर लकड़ी पर रखें, पर नीचे आग न लगाएं, और मैं दूसरे बैल को तैयार करूँगा और उसे लकड़ी पर रखूँगा और नीचे आग न लगाऊँगा। तब तुम अपने देवताओं के नाम से पुकारो और मैं यहोवा के नाम से पुकारूंगा, और जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोगों ने उत्तर देकर कहा, ये बात अच्छी है। 1 राजा 18:20-24।
कर्मेल की कसौटी दो संदेशों में से चुनने की थी, ये सत्य और मिथ्या भविष्यवाणी के बीच और दूत एलिया अथवा ईजेबेल की मेज पर बैठने वाले भविष्यद्वक्ताओं के बीच की परीक्षा थी। ये दूत और संदेश के विषय में था। 1844 में प्रभु ने ऐसी कसौटी स्थापित की कि कर्मेल की पुनरावृत्ति हुई, जिसने मिलर को सत्य भविष्यद्वक्ता के रूप में और मिलर के संदेश को ओस और वर्षा के रूप में प्रकट किया। सत्य भविष्यद्वक्ता और सत्य संदेश का उनके विपरीत मिथ्या भविष्यद्वक्ता और मिथ्या संदेश से जो भेद है, वो एक्सेटर शिविर सभा में एक्सेटर के तंबू और वाटरटाउन समूह के तंबू द्वारा दर्शाया गया। दो तंबू जो मिथ्या करात सत्य को मिथ्या के विपरीत निरूपित करते थे। कर्मेल पर किया गया वो भेद और 1844 का इतिहास कैसरिया फिलिप्पी में तब चिन्हित होता है जब पतरस पर मुहर लगाई जाती है और उसे एक ध्वज के रूप में पर्वत पर ऊंचा उठाया जाता है। उसे इसलिए ऊंचा उठाया जाता है क्योंकि उसने दावा किया था कि उसका संदेश अंतिम वर्षा का एकमात्र सत्य संदेश है। जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई, तब वह ऊंचा उठाया गया। तुरहियों का पर्व पिंतेकुस्त के काल में तीसरी तथा निर्णायक कसौटी है, और इस कसौटी से पूर्व पत्रस ये इंगित करता है कि अर्धरात्रि की पुकार की घोषणा के आरंभ को चिह्नित करने हेतु इस्लाम को मुक्त किया जाना है। भविष्यवाणी की परिपूर्ति ही वो तत्व था जिसने मिलेराइटों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भेद स्थापित किया। प्रोटेस्टेंट उन पूर्व वाचाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें छोड़कर आगे बढ़ा जा रहा है। सत्य और असत्य के बीच का भेद प्रकट हो जाने पर एलिया ने स्वयं झूठे भविष्यद्वक्ताओं का वध किया। ये भेद तुरहियों के पर्व पर स्थापित होता है जब इस्लाम के विषय में की गई एक भविष्यवाणी की परिपूर्ति होती है। मिलेराइट इतिहास की मध्यरात्रि की पुकार एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसे संशोधित किया गया और तत्पश्चात पूरित हुई। ये 22 अक्टूबर 1844 को पूरित हुई, जबकि मध्यरात्रि की पुकार के विषय में मिलर की मूल समझ वर्ष 1843 थी। सैमुअल स्नो उस संदेश में हुए संशोधन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका संदेश सच्ची मध्यरात्रि की पुकार कहलाया। सन 1884 मिलर के संदेश और प्रोटेस्टेंटों के संदेश के बीच के भेद का एक चित्रण था। परख की प्रक्रिया में प्रोटेस्टेंट मिलर द्वारा वध किए गए और तब वे धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद रोम की पुत्रिया इजाबेल के याजक बन गए। ये भेद भविष्यवाणी के संदेश के स्वीकार या अस्वीकार के द्वारा प्रकट हुआ। यूहन्ना और मिलर के साथ भविष्यवाणी के संदेश ने उन पूर्व वाचा के लोगों के मिथ्या संदेश को उजागर किया जो छोड़े जा रहे थे। एलिया के संदेश ने ये दावा किया कि उसके वचन के अतिरिक्त वर्षा न होगी और 3.5 वर्ष बाद उस दावे की परख प्रकट होनी थी।
और ऐसा हुआ कि जब अहाब ने एलिया को देखा तब अहाब ने उससे कहा, क्या तू वही है जो इज़राइल को क्लेश में डालता है? तब उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइल को क्लेश में नहीं डाला, परंतु तू और तेरे पिता का घराना, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया है, तब यहोवा की बीचे के परतप के तू बालों के पीछे हो लिया है। अथा अब भेज और सारे इज़राइल को मेरे पास हनमेर पर्वत पर इकट्ठा कर और बाल का 450 भविष्यद्वक्ताओं को और उपवनों के 400 भविष्यद्वक्ताओं को जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं। 1 राजा 18:17-19।
असत्य और सत्य के बादशाही, चाहे वो दूत से संबंधित हो या संदेश से, ऐसी परीक्षण प्रक्रिया में किया गया जिसमें संदेश और दूत दोनों के विरुद्ध आरोप सम्मिलित थे। एलिया पर इज़राइल को क्लेश में डालने का आरोप लगाया गया क्योंकि उसके संदेश के कारण वर्षा रुक गई थी। यदि इज़राइल में वर्षा होती रहती तो एलिया के विषय में कोई प्रश्न उठता ही नहीं। ये मुद्दा एलिया की भविष्यवाणी और 3.5 वर्षों के काल में उसकी पूर्ति पर आधारित था। जब पत्रस कैसरिया फिलिप्पी की कसौटी पर होता है, जो तुरहियों का पर्व है और वो भी वही स्थान है जहां गधे को खोला जाता है, तब आधी रात की पुकार के संदेश का प्रारंभ चिह्नित होता है। एलिया के समान पत्रस ने अभी अभी अपनी भविष्यवाणी की पुष्टि को देखा है और सत्य तथा असत्य के बीच का भेद सबके देखने के लिए प्रत्यक्ष कर दिया गया है। उस भविष्यवाणी की पुष्टि का प्रतीक तुरहियों का पर्व है, जो वही कसौटी है। उस भविष्यवाणी का प्रकार 1840 और 1844 दोनों में मिलता है, जहां एक भविष्यवाणी सुधारी जाती है और तत्पश्चात पूर्ण होती है। जोसाया लिच की सुधारी हुई भविष्यवाणी ने 11 अगस्त 1840 को प्रथम स्वर्गदूत के संदेश को सशक्त किया और 1843 के वर्ष के संबंध में मिलर की भविष्यवाणी को स्नो ने सुधार दिया।
8 साल फर्ती में भविष्यवाणी की एक और उल्लेखनीय पूर्ति ने व्यापक रुचि उत्पन्न की। 2 वर्ष पूर्व दूसरे आगमन का प्रचार करने वाले प्रमुख सेवकों में से एक जोसियार लिच ने प्रकाशित वाक्य 9 की एक व्याख्या की प्रकाशित की थी, जिसमें उस्मानी साम्राज्य के वतन की भविष्यवाणी की गई थी। उसकी गणनाओं के अनुसार ये शक्ति 11 अगस्त 840 को परास्त होने वाली थी, जब ये अपेक्षा की जा सकती है कि कुस्तुनतुनिया में उस्मानी शक्ति भंग हो जाएगी, और मुझे विश्वास है कि यही सत्य सिद्ध होगा। ठीक उसी समय जो निर्दिष्ट किया गया था, तुर्की ने अपने राजदूतों के माध्यम से यूरोप की सहयोगी शक्तियों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अपने को मसीही राष्ट्रों के नियंत्रण के अधीन कर दिया। इस घटना ने भविष्यवाणी को ठीक ठीक पूर्ण किया। जब ये ज्ञात हुआ तब बहुतों को मिलर और उसके सहकर्मियों द्वारा अपनाए गए भविष्यवाणी व्याख्या के सिद्धांतों की सत्यता का विश्वास हो गया और आगमन आंदोलन को अद्भुत प्रेरणा मिली। विद्वान और प्रतिष्ठित पुरुष उपदेश देने तथा उसके विचारों को प्रकाशित करने दोनों में मिलर के साथ सम्मिलित हो गए और 1840 से 1844 तक ये कार्य तीव्रता से फैलता गया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 334-335।
लिच की भविष्यवाणी इस्लाम के विषय में थी और स्नो की भविष्यवाणी बंद द्वार के विषय में थी। जब लिच की भविष्यवाणी पूरी हुई तो वो कार्य पद्धति जिसके द्वारा संदेश स्थापित हुआ था स्वीकार की गई, और जिन्होंने संदेश को स्वीकार किया वे संदेश वाहक के साथ एकीकृत हो गए। भविष्यवाणी की पूर्ति में संदेश और संदेश वाहक दोनों को मान्यता मिली। लिच की भविष्यवाणी इस्लाम के विषय में थी और स्नो की भविष्यवाणी बंद द्वार के विषय में थी।
मैंने देखा कि परमेश्वर के लोग अपने प्रभु की प्रतीक्षा में हर्षित थे, उसे खोज रहे थे, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य उन्हें परखना था। उसके हाथ ने भविष्यवाणी के कालखंडों की गणना में हुई एक भूल को ढक रखा। जो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे वे इस भूल को न पहचान सके, और समय का विरोध करने वाले बड़े से बड़े विद्वान भी इसे देख न पाए। परमेश्वर ने ठहराया था कि उसके लोग एक निराशा का सामना करें। समय बीत गया और जो अपने उद्धारकर्ता की हर्षपूर्ण अपेक्षा में थे वे उदास और निरुत्साहित हो गए, जबकि जिन्होंने यीशु के प्रकट होने से प्रेम नहीं किया था पर भयवश संदेश को स्वीकार किया था वे इस बात से प्रसन्न थे कि वो अपेक्षित समय पर नहीं आए। उनके अंगीकार ने न हृदय को छुआ था और न जीवन को शुद्ध किया था। समय का यूं बीत जाना ऐसे हृदयों को प्रकट करने के लिए अत्यंत उपयुक्त था। वही लोग सबसे पहले मुड़कर उपहास करने लगे उन दुखी निराश जनों का जो सचमुच अपने उद्धारकर्ता के प्रकट होने से प्रेम रखते थे। मैंने परमेश्वर की बुद्धि देखी कि वो अपने लोगों को परख रहा था और उन्हें ऐसी गहन परीक्षा दे रहा था जिससे ये पता चले कि कौन परीक्षा की घड़ी में घबराकर पीछे हट जाएगा। यीशु और स्वर्ग की समस्त सेनाएं उन लोगों की ओर सहानुभूति और प्रेम से देख रही थीं जिन्होंने मधुर आशा के साथ उसे देखने की लालसा की थी जिसे उनकी आत्माएं प्रेम करती थीं। परीक्षा की घड़ी में उन्हें संभालने के लिए स्वर्गदूत उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। जिन्होंने स्वर्गीय संदेश को ग्रहण करने की उपेक्षा की थी वे अंधकार में छोड़ दिए गए, और उनके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा क्योंकि वे उस प्रकाश को ग्रहण करने को तैयार न हुए जो उसने स्वर्ग से उन्हें भेजा था। वे विश्वास योग्य परंतु निराश लोग जो ये समझ नहीं पाए कि उनका प्रभु क्यों नहीं आया अंधकार में नहीं छोड़े गए। उन्हें फिर उनकी बाइबलों की ओर भविष्य सूचक कालों की खोज करने के लिए मार्गदर्शित किया गया। गणनाओं पर से प्रभु का हाथ हटा लिया गया और भूल स्पष्ट हो गई। उन्होंने देखा कि भविष्य सूचक काल 1844 तक पहुंचते थे, और ये भी कि वही प्रमाण जो उन्होंने ये दिखाने के लिए प्रस्तुत किया था कि भविष्य सूचक काल 1843 में समाप्त होते थे सिद्ध करता था कि वे 1844 में समाप्त होंगे। परमेश्वर के वचन से प्रकाश उनकी स्थिति पर चमका और उन्होंने विलंब का एक समय पहचाना। यद्यपि वो दर्शन विलंब करे उसकी प्रतीक्षा करो। मसीह के तत्काल आगमन के प्रति अपने प्रेम में उन्होंने दर्शन के विलंब को नज़रअंदाज कर दिया था जो सच्चे प्रतीक्षारत जनों को प्रकट करने के लिए ठहराया गया था। फिर उनके पास एक निश्चित समय था। तथापि मैंने देखा कि उनमें से बहुत से लोग अपनी गंभीर निराशा से ऊपर उठकर उस उत्साह और ऊर्जा के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जिसने 1843 में उनके विश्वास को चिह्नित किया था। शैतान और उसके स्वर्गदूतों ने उन पर विजय पाई, और जो लोग संदेश को ग्रहण नहीं करना चाहते थे उन्होंने उस भ्रम को, जैसा कि वे उसे कहते थे, नस्वीकार करने में अपने दूरदर्शी निर्णय और बुद्धि पर स्वयं को बधाई दी। उन्हें ये एहसास नहीं था कि वे अपने ही विरुद्ध परमेश्वर के परामर्श को अस्वीकार कर रहे हैं, और शैतान तथा उसके स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर की उस प्रजा को उलझाने का काम कर रहे हैं जो स्वर्ग प्रेषित संदेश को जी रही थी। इस संदेश के विश्वासियों पर कलीसियाओं में अत्याचार किया गया। कुछ समय तक जो लोग इस संदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते थे भय ने उन्हें अपने हृदय की भावनाओं के अनुसार आचरण करने से रोके रखा, परंतु समय बीतने के साथ उनकी वास्तविक भावनाएं प्रकट हो गईं। वे उस गवाही को मौन कर देना चाहते थे जिसे प्रतीक्षा करने वाले ये कहने के लिए विवश महसूस करते थे कि भविष्य सूचक कालखंड 1844 तक विस्तृत थे। विश्वासियों ने स्पष्ट रूप से अपनी भूल समझाई और ये कारण बताए कि वे 1844 में अपने प्रभु के आने की आशा क्यों करते थे। उनके विरोधी प्रस्तुत किए गए प्रबल कारणों के विरुद्ध कोई तर्क नहीं ला सके। फिर भी कलीसियाओं का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे प्रमाण नहीं सुनेंगे और उस गवाही को कलीसियाओं से बाहर रखेंगे ताकि अन्य लोग उसे न सुन सकें। जो लोग परमेश्वर द्वारा दी गई ज्योति को दूसरों से रोक रखने का साहस नहीं करते थे, उन्हें कलीसियाओं से बाहर कर दिया गया, परंतु यीशु उनके साथ था और वे उसके मुख्य ज्योति में आनंदित थे। वे दूसरे स्वर्गदूत के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। प्रारंभिक लेखन 235-237 एरा।
पत्रस 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है जो लिच के समान इस्लाम और एक राज्य के अंत के विषय में एक संशोधित भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं, और स्नो के समान पतरस भी बंद द्वार के विषय में एक संशोधित भविष्यवाणी प्रस्तुत करता है। इस्लाम के अछाद समय के लिच का संदेश एक बाह्य भविष्यवाणी था और बंद द्वार के संबंध में स्नो की भविष्यवाणी बातरिक थी। स्नो के लिए कार्य तब आरंभ हुआ जब प्रभु ने गणनाओं पर से अपना हाथ हटा लिया और तब ये देखा गया कि वही प्रमाण जिसे पूर्व में 1843 को सिद्ध करने वाला समझा गया था वास्तव में 22 अक्टूबर 1844 को सिद्ध करता था। लिच के लिए वो एक गणना थी जो पूर्ण होने पर प्रकाशित वाक्य 10 के स्वर्गदूत को पृथ्वी और समुद्र पर खड़ा होने के लिए नीचे ले आई। ये तथ्य कि लीच ने अपनी भविष्यवाणी की पूर्ति से 10 दिन पहले उसे पुनर्गणित किया, पूर्ववर्ती भविष्यवाणी को सुधारने के कार्य को एक परीक्षा के रूप में चिन्हित करता है। क्या 1840 में आरंभ और 1844 में समापन वस्तुतः उस भविष्यवाणी का एक भविष्य सूचक प्रतीक है जो पुनर्गणित होकर सत्य मध्यरात्रि आह्वान बन जाती है? क्या मिलराइट इतिहास का अल्फा और ओमेगा जो मध्य रात्रि आह्वान की उद्घोषणा पर समाप्त हुआ? वस्तुतः 144,000 के सत्य मध्य रात्रि आह्वान के भविष्य सूचक लक्षणों की पूर्व छाया प्रस्तुत करता है। सुधारित भविष्यवाणी की घोषणा के दोनों कालों में मिलराइट संदेश के विरुद्ध विवाद प्रकट हुआ क्योंकि वो संदेश लोगों को व्याकुल करता था। जब पत्रस कैसरिया फिलिप्पी में खड़ा है तब उस संदेश के विषय में विवाद विद्यमान है जो कैसरिया फिलिप्पी से पूर्व ही आरंभ हो चुका था, क्योंकि वही पूर्ति ये पुष्ट करती है कि मात्र पत्रस के वचन पर ही वर्षा का संदेश बरसेगा। कैसरिया फिलिप्पी तूरियों के पर्व के समकक्ष है और ये उस घटना के साथ सुसंगत है जब मसीह ने दो चेलों को, जो दूसरे स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व उतर करते हैं, इस्लाम के बंधे गधे को खोल देने के लिए भेजा। इस्लाम के गधे का बांध खोला जाना एक्सेटर कैंप मीटिंग में मध्य रात्रि की पुकार के संदेश की शुरुआत की घोषणा करता है, क्योंकि 13 अगस्त को घोड़े पर सवार होकर एक दिन विलंब से पहुंचे सैमुअल स्नो, जो उद्घाटन दिवस पर पहुंचने के बजाय ठहर गए थे, ने विलंब के समय का अंत और उस संदेश की शुरुआत को चिह्नित किया जो 17 तारीख को सभा समाप्त होने पर ज्वारीय तरंग की भांति आगे बढ़ाया गया। मिलरवादी इतिहास का विवाद, राजा अहाब के आरोप और जब मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तब कुतर्की यहूदियों का प्रतिरोध, ये सब उस विवाद की पहचान करते हैं जिसकी परिणति तुरहियों के पर्व पर जब गधा खोला जाता है होती है। गधे का खोले जाना उस भविष्यवाणी की पुष्टि है जो प्रारंभ में कैसरिया फिलिपी में एडवेंटिज्म पर एक बंद दरवाजे की और कालावधि के अंत में कैसरिया मरितिमा में एक बंद दरवाजे की पहचान करती है। गधा तीसरी हाई के इस्लाम का प्रतीक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर नैशविल टेनेसी सहित प्रहार करता है। 18 जुलाई 2020 की असफल भविष्यवाणी अब क्रमशः सुधारी जा रही है क्योंकि प्रभु अपना हाथ हटा रहे हैं और यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य को अनावृत कर रहे हैं। वो मुहर उद्घाटन जुलाई 2023 में मरुभूमि में आरंभ हुआ।
दानियल अध्याय 11 का दर्शन।
तुरहियों का पर्व सातवीं तुरही का प्रतिनिधित्व करता है जो तीसरा हाइस है जो इस्लाम है। तुरही युद्ध के लिए एक बाह्य चेतावनी संदेश है, किंतु इसे एक पवित्र सभा के लिए आंतरिक आह्वान के रूप में भी समझा जा सकता है। दूसरे मंदिर की परीक्षा के 30 दिन पूरे होने पर आरंभ होने वाली कसौटी के रूप में ये संदेश एक साथ बाह्य भी है और आंतरिक भी। प्रथम आधारभूत परीक्षा वर्ष 2024 के वसंत में आई, जब दानियल 11:16 में निरूपित मसीह विरोधी का बाह्य दर्शन प्रकट हुआ।
और उन समयों में बहुत से दक्षिण के राजा के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और तेरी प्रजा के लुटेरे भी दर्शन को स्थिर करने के लिए अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, परंतु वे गिर पड़ेंगे। दानियल 11:9।
पूर्ववर्ती पद में पानियम का परिचय प्रस्तुत किया गया और पानियम का साक्ष्य 15वें पद तक जारी रहता है।
क्योंकि उत्तर का राजा लौटेगा और पहले की तुलना में अधिक बड़ी सेना खड़ी करेगा, और कुछ वर्षों के बाद वो बड़ी सेना और बहुत सा धन संपत्ति के साथ निश्चय ही आएगा। दानियल 11:13।
पद 10-15 से में उत्तर का राजा पापसी की प्रतिनिधि शक्ति है, जिसका पद 10 में प्रतिनिधित्व रोनाल्ड रीगन ने तब किया था जब लोह पर्दे की दीवार हटाई गई, जिसका प्रतिरूप 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार के पतन में प्रकट हुआ। पद 16 रविवार विधान में कलीसिया और राज्य के पृथककरण की दीवार के हटाए जाने को चिह्नित करता है। पद 11 और 12 2014 में प्रारंभ हुए यूक्रेन के युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पद 13 2024 के चुनाव की पहचान करता है, जब ट्रंप, जो रीगन के बाद 8वां राष्ट्रपति है और जो 7 में से 8वां भी है, अधिक सामर्थ्य के साथ लौटता है, क्योंकि जब वो लौट चाहतेगा तब वो पूर्ववर्ती से भी बड़ी सेना प्रस्तुत करेगा, और निश्चित वर्षों के बाद निश्चय ही आएगा, निश्चित वर्ष जो बाइडन के 4 वर्ष है। सौनी 204:13 के अनुरूप रोम पानियम के भविष्यवाणी संबंधी इतिहास में स्वयं को सम्मिलित करेगा। 8 मई 2025 पौ आध्यात्मिक महिमामय देश से प्रथम पोप चुना गया और उसने लियो नाम चुना, जो अपने साथ अनेक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी संबंधी विशेषताएं लिए हुए हैं। तदुपरांत पद 15 में युद्ध आरंभ होता है।
तब उत्तर का राजा आएगा और घेराबंदी का टीला बनाएगा और सबसे दृढ़ गढ़ वाले नगरों को ले लेगा, और दक्षिण की भुजाएं उसका सामना न कर सकेंगी, न उसके चुने हुए लोग, और विरोध करने की कोई शक्ति न रहेगी। दानियल 11:15।
पद 15 में पनियम का युद्ध आरंभ किया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिनिधित्वित पृथ्वी का पशु दक्षिण के राज्य को पराजित करेगा। पद 11 का दक्षिण का राजा यूक्रेन के साथ एक युद्ध आरंभ करता है, वह यूक्रेन जो पापतक की प्रतिनिधि शक्ति है और जिसका वित्त पोषण तथा समर्थन पापतक की ही पद 10 में उल्लिखित प्रतिनिधि शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। दक्षिण का राजा राफिया के युद्ध में विजयी होगा, परंतु उस विजय के पश्चात वह प्रगतिशील विघटन, जो दक्षिण के किसी अजगर राज्य के पतन के साथ सदैव संबद्ध रहता है, दक्षिण के राजा को अत्यंत असुरक्षित स्थिति में छोड़ देता है, क्योंकि उत्तर का राजा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर लौटता है और पनियम के युद्ध की तैयारी करता है। 2014 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेनी युद्ध की पहल की, तब रूस और पुतिन ही दक्षिण का राजा थे। 2022 में आक्रमण आरंभ हुआ और रक्त बहने लगा। 2024 में उत्तर का राजा लौंस आया। पत्रस कैसारिया फिलिपी में है, ये आधी रात की पुकार के संदेश की उद्घोषणा का आरंभ है। पत्रस इलिचा के समान और लिच तथा स्नो द्वारा अभिव्यक्त मिलराइटों के समान पूर्व में बंद द्वार और इस्लाम के विषय में एक भविष्यवाणी प्रस्तुत कर चुका है। उसकी पूर्ति सच्चे और मिथ्या उत्तर वृष्टि संबंधी संदेशों तथा सच्चे और मिथ्या संदेशवाहकों के बीच के भेद को प्रकट करती है। पत्रस का संदेश नैशविल और इस्लाम का सुधारित संदेश है, और जब वो कैसारिया फिलिपी में खड़ा है तब वो बी पानियम पर खड़ा है, वो युद्ध जो पद 16 के रविवार के कानून की ओर ले जाता है। पत्रस की भविष्यवाणी की पूर्ति आधी रात की पुकार की उद्घोषणा की शुरुआत को चिन्हित करती है, जब इस्लाम मुक्त किया जाता है, जो कि रेखा पर रेखा वही समय है जब पानियम का युद्ध हा पहुंचता है।
दानियल के 10वें अध्याय का दर्शन।
तुरहियों का पर्व सातवीं तुरही का प्रतिनिधित्व करता है, जो तीसरा हाय है, जो कि इस्लाम है। तुरही चेतावनी का संदेश है और ये पवित्र सभा का आह्वान भी है। ये वो कसौटी भी है जो तब आरंभ होती है जब द्वितीय मंदिर की परीक्षा के 30 दिन पूरे हो जाते हैं। विरोधी मसीह का पहला आधारभूत बाह्य परीक्षात्मक दर्शन वह 24 के वसंत में प्रकट हुआ और मसीह का दूसरा आंतरिक परीक्षात्मक दर्शन, जैसा कि दानियल 10 में दर्शाया गया है, वह 24 में प्रकट हुआ।
तब मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा, और देखो, एक पुरुष सन के वस्त्र पहने हुए था, जिसकी कमर उफाज के उत्तम सोने से कसी हुई थी। उसका शरीर भी पुखराज के समान था और उसका मुख बिजली के स्वरूप के समान और उसकी आंखें आग के दीपकों के समान और उसकी भुजाएं और उसके पांव रंग में चमकते पीतल के समान और उसके वचनों की ध्वनि भीड़ की ध्वनि के समान थी।
और मैं दानियल ही ने अकेले उस दर्शन को देखा, क्योंकि जो पुरुष मेरे साथ थे उन्होंने उस दर्शन को नहीं देखा, परंतु उन पर बड़ी थरथराहट छा गई, इस कारण वे अपने को छिपाने के लिए भाग गए। अतएव मैं अकेला रह गया और मैंने ये महान दर्शन देखा और मुझमें कोई शक्ति न रही, क्योंकि मेरी शोभा मुझमें भ्रष्टता में बदल गई और मुझमें शक्ति शेष न रही। तथापि मैंने उसके वचनों का शब्द सुना, और जब मैंने उसके वचनों का शब्द सुना तब मैं अपने मुख के बल गहन निद्रा में पड़ गया और मेरा मुख भूमि की ओर था, और देखो, एक हाथ ने मुझे छुआ और उसने मुझे मेरे घुटनों और हाथों की हथेलियों पर टिका दिया, और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अत्यंत प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उन्हें समझ और सीधा खड़ा हो, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने ये वचन मुझसे कहा तब मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, मत डर दानियल, क्योंकि जिस पहले दिन से तूने समझने का मन लगाया और अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन किया, तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। परंतु पारस के राज्य के प्रधान ने मुझे 21 दिन तक रोकता रहा। तब देख, मीखाएल, जो प्रधान सरदारों में से एक है, मेरी सहायता करने को आया और मैं वहां पारस के राजाओं के साथ ठहरा रहा। अब मैं इसलिए आया हूं कि तुझे ये समझा दूं कि अंतिम दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगा, क्योंकि ये दर्शन अब भी बहुत दिनों के लिए है। और जब उसने ऐसे वचन मुझसे कहे तब मैंने अपना मुख भूमि की ओर झुका लिया और मैं मूक हो गया। और देखो, मनुष्यों के पुत्रों के स्वरूप के सदृश एक ने मेरे होंठों को छुआ। तब मैंने अपना मुख खोला और बोलकर उससे कहा जो मेरे सामने खड़ा था, हे मेरे स्वामी, इस दर्शन के कारण मेरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं और मुझ में कोई शक्ति नहीं रही, क्योंकि इस मेरे स्वामी का दास इस मेरे स्वामी से कैसे बातें कर सकता है, क्योंकि मुझ में तो तत्काल ही कोई शक्ति न रही और श्वास भी मुझ में न रहा।
तब फिर एक जो मनुष्य के रूप के समान था आया और मुझे छू लिया, और उसने मुझे बल दिया और कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझ पर शांति हो, बलवान हो, वरन बलवान हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तब मैं बल पा गया और कहा, मेरे प्रभु बोलें, क्योंकि आपने मुझे बल दिया है। दानियल 10:5-19।
22वें दिन दानियल ने अंतिम दिनों में स्वर्गीय महायाजक का दर्शन देखा। रोम द्वारा दर्शन की स्थापना का दर्शन 2024 का मूलभूत और अल्फा परीक्षण था, और मसीह का दर्शन मंदिर परीक्षण है। ये उस वर्ग का पृथक्करण उत्पन्न करता है जो दानियल से भागकर छिप जाते हैं। वो वर्ग झूठ और असत्य की आड़ में छिपता है और इसी कारण उस पर प्रबल भ्रम आता है। तत्पश्चात दानियल को 3 बार स्पर्श किया जाता है, पहली बार गब्रियल द्वारा, फिर मसीह द्वारा, और तीसरी बार पुनः गब्रियल द्वारा। अति पवित्र स्थान में जब दानियल को 3 बार स्पर्श किया जाता है तो वो शक्तिवर्धन का चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये इस प्रकार आरंभ होता है कि दर्शन देखते समय उसमें कोई शक्ति नहीं रहती, परंतु तीसरे स्पर्श तक वो अंततः सुदृढ़ कर दिया जाता है। उसे यह समझने के लिए सामर्थ्य दिया जाता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा पर क्या घटेगा। अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा पर जो घटित होगा उसका भविष्य सूचक संदेश 10 कुमारियों के दृष्टांत बहु में निरूपित है।
दानियल आरंभ में निर्बल है, क्योंकि मसीह के दर्पणवत दर्शन ने उसे निःशक्त कर दिया था,
परंतु तीन बार स्पर्श किए जाने के अंत तक वो सुदृढ़ कर दिया जाता है और बलवंत हो, हाँ बलवंत हो की आज्ञा एक दोहराव है जो दूसरे स्वर्गदूत अथवा दूसरी परिदर्शा को चिह्नित करता है। दूसरी परीक्षा मंदिर परीक्षा है, जहां परमेश्वर की प्रजा एक्सेटर शिविर सभा के समाप्त होने पर आधी रात की पुकार का संदेश घोषित करने के लिए सशक्त की जाती है। वही परीक्षा मंदिर परीक्षा है, जहां वो शिला जो नींव और कोने का पत्थर थी, मंदिर का अद्भुत शिरोपत्थर बन जाती है और इस प्रकार उसके पूर्ण होने का चिन्ह लगता है। दानियल 22वें दिन सुदृढ़ किया जाता है, जब वो विश्वास से महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। ऐसा करते ही गब्रियल उसे स्पर्श करता है, फिर मसीह उसे स्पर्श करते हैं और तब गब्रियल पुनः उसे स्पर्श करता है। इस प्रकार दानियल महापवित्र स्थान में संदेश घोषित करने के लिए सुदृढ़ किया जाता है, जहां वो मसीह को दो स्वर्गदूतों के बीच देखता है और महापवित्र स्थान में वो स्थान जहां मसीह मध्य में है, वही दया आसन है जिसके दोनों ओर आवरण करने वाले दो करूब है जो उस वाचा के संदूक की ओर दृष्टि किए हैं, जो अपने सिंहासन पर विराजमान मसीह की शेखीना महिमा के प्रकाश से आलोकित है। दानियल अध्याय 10 का दर्शन भविष्यद्वानात्मक रीति से इस प्रकार संयोजित है कि दानियल दया आसन के सिंहासन पर शेखीना के रूप में मसीह की महिमा का अवलोकन करता है और उसी समय दो आच्छादक करूब संदूक में निहारते हैं। तुरहियों के पर्व से पहले एलिय्याह ये दावा करता है कि वर्षा संबंधी उसका संदेश ही प्रभु की ओर से आया हुआ एकमात्र संदेश है और वो एक ऐसी भविष्यवाणी रखता है जिसकी परिणति एक ऐसे प्रदर्शन में होती है जो ये सिद्ध करता है कि संदेश वाहक कौन है या कौन नहीं और संदेश क्या है या क्या नहीं। कर्मेल से तुर्ब के 3.5 वर्षों तक राजा अहाब एलिय्याह को खोजता रहा, क्योंकि कर्मेल से पहले एक विवाद का कालखंड होता है। पर्वत कर्मेल तो केवल वो कसौटी है जहां चरित्र प्रकट होता है। मिलराइट इतिहास की समान अवधि में भी वही गवाही निहित थी, क्योंकि जिन्होंने संदेश से घुना की उन्होंने विश्वास योग्यों को कलीसियाओं से बाहर कर दिया और तत्पश्चात विश्वास योग्यों ने एक ऐसा संदेश उठाया जो लोगों को उस पतित पूर्व वाचा की प्रजा में से बाहर बुलाता था जिन्हें छोड़कर आगे बढ़ा जा रहा था। पत्रस पिंतेकु स्तीय रविवार विधान के समय यूएल का संदेश घोषित कर रहा है, अर्थात पत्रस वही संदेश उस समय घोषित कर रहा है जब एक्सेटर की शिविर सभा के अंत में मध्यरात्रि की पुकार का काल आरंभ होता है, जो तब आरंभ हुआ जब पत्रस की भविष्यवाणी का संशोधन उसी प्रकार किया गया जैसा स्नो और लिच के संदेशों का किया गया था। भविष्यवाणी की पूर्ति से पूर्व सदैव एक विवाद पूर्वगामी होता है, अतः वो विवाद भविष्यवाणी की पूर्ति से पहले ही आरंभ होता है। वह संदेश जो अहाब इजबेल और उसके भविष्यद्वक्ताओं मसीह के दिनों के कुतर्की यहूदियों तथा मिलराइट इतिहास के पतित प्रोटेस्टेंटों को व्याकुल करता है, उसे पत्रस योएल की पुस्तक के रूप में अभिहित करता है। गधे का बंधन खोले जाने से चिह्नित तीसरी लिटमस कसौटी से पूर्व पत्रस के संदेश पर लाओदिकियाई एडवेंटिज्म द्वारा प्रहार किया जाता है और पत्रस उस प्रतिरोध के प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट करता है कि संदेश वाहक मत वाले नहीं है, वे तो मात्र योएल के 3 अध्यायों की पूर्ति है। योएल के 3 अध्याय लाओदिकियाई एडवेंटिज्म की कटु भर्त्सना से आरंभ होते हैं, जब वो संदेश उन लोगों के कानों तक पहुंचेगा जो प्रबल मदिरा से मत वाले हैं तो वे प्रतिक्रिया करेंगे। उन्होंने मसीह का सामना तब किया जब वो यरूशलेम को जाते हुए पर्वत से उतर रहे थे और उन्होंने फिर यरूशलेम में भी उनका सामना किया। गधा खोला गया, प्रवेश आरंभ होता है। कुतर्क करने वाले यहूदी संदेश को मौन करा देना चाहते हैं। यीशु आगे बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं और एडवेंटवाद के परिवीक्षा काल के अंतिम दिन पर रोते हैं। तत्पश्चात यरूशलेम में उन यहूदियों के साथ एक और सामना होता है जो चाहते हैं कि लोग अपना संदेश देना बंद कर दें। उस दिन जब सूर्य अस्त हुआ, यहूदी राष्ट्र के लिए परिवीक्षा काल एक और चरण पर पहुंच गया। विरोध की ये प्रगति क्रूस पर मृत्यु तक जारी रहती है और ये लाजरुस के पुनरुत्थान के साथ ही गंभीर रूप से आरंभ हुई, जिसने दूसरे स्वर्गदूत के आगमन और विलंब काल को चिह्नित किया।
बैतनिया यरूशलेम के इतने निकट था कि लाजर के जी उठाए जाने का समाचार शीघ्र ही नगर तक पहुंच गया। उस चमत्कार के प्रत्यक्षदर्शी गुप्तचरों के द्वारा यहूदी शासक शीघ्र ही समस्त तथ्यों से अवगत हो गए। क्या किया जाना चाहिए ये निर्णय करने के लिए सनेद्रीन की सभा तत्काल बुलाई गई। मसीह ने अब मृत्यु और कब्र पर अपने अधिकार को पूर्णतः प्रकट कर दिया था। वो महान चमत्कार मनुष्यों को परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च प्रमाण था कि उसने उनके उद्धार के लिए अपने पुत्र को जगत ने भेजा है। ये दैवी सामर्थ्य का ऐसा प्रदर्शन था जो तर्क बुद्धि और प्रबुद्ध विवेक के नियंत्रण में रहने वाले प्रत्येक मन को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। लाजर के पुनरुत्थान का दर्शन करने वालों में से बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु याजकों की उसके प्रति घृणा और भी तीव्र हो गई। उन्होंने उसके देवत्व के अन्य अपेक्षाकृत छोटे प्रमाणु को अस्वीकार कर दिया था और इस नए चमत्कार से वे केवल क्रोध से उग्र हो उठे। मरे हुए को दिन के पूरे उजाले में और गवाहों की भीड़ के सामने जीवित किया गया था। ऐसे प्रमाण का निराकरण किसी भी कुटिल उपाय से नहीं किया जा सकता था। इसी कारण याजकों की शत्रुता और भी घातक हो गई। वे पहले से कहीं अधिक इस बात पर अड़िग हो गए कि मसीह के कार्य को रोका जाए। सदूकी, यद्यपि मसीह के अनुकूल नहीं थे, तथापि उनमें उसके प्रति फरीसियों जितनी घोर दुर्भावना नहीं थी। उनकी घृणा इतनी कटु नहीं रही थी, पर अब वे पूरी तरह से भयभीत हो उठे थे। वे मरे हों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। तथाकथित विज्ञान का सहारा लेकर उन्होंने तर्क किया था कि किसी मृत देह का फिर से जीवित किया जाना असंभव है, पर मसीह के कुछ ही वचनों से उनका ये सिद्धांत ध्वस्त हो गया था। ये प्रकट हो गया कि वे ना तो शास्त्रों से परिचित थे और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य से। वे चमत्कार से लोगों पर पड़े प्रभाव को मिटाने की कोई संभावना नहीं देख पा रहे थे। जो कब्र को उसके मृतकों से वंचित करने में विजयी सिद्ध हुआ, उससे लोगों को कैसे फेरा जा सकता था। झूठी खबरें प्रचलन में लाई गई, पर चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता था, और उसके प्रभाव को निष्प्रभाव कैसे किया जाए, ये वे जानते न थे। अब तक सदूकियों ने मसीह को मार डालने की योजना का समर्थन नहीं किया था, परंतु लाजर के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि केवल उसकी मृत्यु से ही उनके विरुद्ध उसकी निर्भीक भर्त्सनाएं रोकी जा सकती हैं। द डिजायर ऑफ एजेस 537।
लाजर की मृत्यु ने उन चार दिनों की शुरुआत को चिह्नित करिया जब यीशु ठहरे रहे। इसकी मृत्यु दूसरे स्वर्गदूत के आगमन का प्रतीक थी, जो विलंब काल की शुरुआत को चिह्नित करता है। उसका पुनरुत्थान 31 दिसंबर 2023 को 9:11 के 22 वर्ष बाद दो गवाहों के पुनरुत्थान को चिह्नित करता है। उसका पुनरुत्थान यहेजकेल की मृत सूखी हड्डियों के पुनरुत्थान को चिह्नित करता है। उसके पुनरुत्थान का पूर्व रूप आदम की सृष्टि थी, जो इस प्रकार थी कि मानवता, जिसका प्रतीक मिट्टी थी, को दिव्यता, जिसका प्रतीक जीवन की श्वास थी, के साथ संयोजित किया गया था।
यहूदियों के याजकों ने शासकों को यीशु से घृणा थी, परंतु असंख्य जन उनके ज्ञान के वचनों को सुनने और उनके सामर्थ्य के कार्यों को देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। लोग गहनतम रुचि से उद्दीप्त थे और इस अद्भुत शिक्षक की शिक्षाएं सुनने के लिए उत्सुकतापूर्वक यीशु का अनुसरण करते थे। बहुत से शासकों ने उस पर विश्वास किया, परंतु इस भय से अपने विश्वास का अंगीकार करने का साहस न किया कि कहीं वे आराधनालय से निकाल न दिए जाए। याजकों और प्राचीनों ने निश्चय किया कि लोगों का ध्यान यीशु से हटाने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। उन्हें भय था कि सब मनुष्य उस पर विश्वास करेंगे। उन्हें अपने लिए कोई सुरक्षा दिखाई नहीं देती थी। या तो उन्हें अपना पद खोना होगा या यीशु को मृत्यु के हवाले कर देना होगा, और यदि वे उसे मृत्यु के हवाले कर भी दें तो भी उसकी सामर्थ्य के जीवित स्मारक बने रहने वाले लोग रहेंगे। यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया था और उन्हें ये भय था कि यदि वे यीशु को मार डालें तो लाजर उसकी महान सामर्थ्य की गवाही देगा। जो मरे हुओं में से जिलाया गया था उसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे थे, और शासकों ने ये ठाना कि लाजर को भी मार डालें और इस उत्तेजना को दबा दें तब वे लोगों को मनुष्यों की परंपराओं और सिद्धांतों की ओर, यहाँ तक कि पुदीना और सुदाब का दशमांश देने की ओर मोड़ देंगे और फिर से उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेंगे। उन्होंने ये ठहराया कि यीशु को तब पकड़ा जाए जब वो अकेला हो, क्योंकि यदि वे उसे भीड़ में पकड़ने का प्रयत्न करें जब लोगों का मन पूर्णतः उस पर लगा हुआ हो, तो वे पत्थरों से मारे जाएंगे। प्रारंभिक लेखन सभासठ
18 जुलाई 2002 को प्रकाशित वाक्य के दो साक्षियों का वध कर दिया गया और दूसरा स्वर्गदूत आ गया तथा विलंब का समय उपस्थित हो गया। 31 दिसंबर 2023 को दो चरणीय पुनर्थान प्रक्रिया आरंभ हुई। पहला चरण नींव रखना था, दूसरा चरण उस नींव पर मंदिर का निर्माण था। लाओदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया ने उस संदेश से 1990 में उसके जन्म के समय से ही घृणा की है और आज भी करती है। अब जबकि वे घृणित साक्षी, जिन्हें वे मरा हुआ समझते थे, फिर से जी उठे हैं, वे उस संदेश से और भी अधिक घृणा करेंगे। वे 18 जुलाई 2002 की भविष्यवाणी के विषय में उसी विष द्वेष के साथ वितर्क करेंगे जैसा यहूदियों में लाजरुस के पुनर्थान के प्रति था। मंदिर परीक्षा के इतिहास में पतरस उनके मिथ्या आरोपों का उत्तर देने के लिए योएल की पुस्तक की ओर संकेत करेगा, जो उनकी सब झूठी बातों का उत्तर है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।